सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो काफी सोचने पर मजबूर करती है, मिशेल फूको की अनुशासन और दंड, जेल का जन्म।
हाँ, और ये किताब मतलब लिखी तो काफी पहले गई थी, लेकिन आज भी इसकी बातें शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी लगती हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि भाई सजा देने के तरीके अब बेहतर हो गए हैं, ज्यादा मानवीय है।
बिल्कुल, जैसे कहा वो पुराने जमाने में सरेआम फांसी या कोड़े, और कहा आज की जेलें।
हाँ, पर क्या ये वाकई सिर्फ एक तरह से कहे तो इंसानियत की तरक्की है या कहानी कुछ और है?
और फूको यहीं पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि इस बदलाव को सिर्फ प्रोग्रेस मान लेना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। वो हमें दिखाते हैं कि समाज में कंट्रोल मतलब नियंत्रण के तरीके कैसे बदल गए।
अच्छा, कैसे?
वो जिस्म पर खुले आम जुल्म करने से हटकर मन और आत्मा को धीरे धीरे चुपचाप अनुशासित करने की तरफ बढ़ गए। और ये नया तरीका जो दिखता तो नरम है, शायद कहीं ज्यादा असरदार है और हर तरफ फैला हुआ है।
तो आज हम फूको के नजरिए से यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदलाव का असल मकसद क्या था और ये नया सिस्टम काम कैसे करता है।
बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत लेखक से ही करते हैं। मिशेल फूको, 1926 से 1984, फ्रांस के बहुत ही प्रभावशाली विचारक थे, पर वो कोई टिपिकल इतिहासकार या दार्शनिक नहीं थे।
हाँ, उनका अंदाज एकदम अलग था। वो खुद को कहते थे ज्ञान का पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ नॉलेज।
हाँ, मतलब वो सिर्फ बड़ी घटनाओं को नहीं देखते थे, वो तो आर्काइव्स में, पुराने दस्तावेजों में घस जाते थे, ये समझने के लिए कि अलग अलग टाइम में समाज किस चीज को सच मानता था, किसे नॉर्मल कहता था और किसे अजीब या पागल।
और सबसे जरूरी बात, वो ये दिखाते थे कि ये परिभाषाएं बनती कैसे हैं। मतलब ये ज्ञान और शक्ति, नॉलेज और पावर मिलकर कैसे ये सब तय करते हैं।
उनकी खास दिलचस्पी थी हमारी आज की संस्थाओं की जड़ों में, जैसे पागलखाने, अस्पताल और जाहिर है जेलें। इस किताब से पहले भी उन्होंने मैडनेस एंड सिविलाइजेशन और द बर्थ ऑफ द क्लिनिक जैसी अहम किताबें लिखी।
बिल्कुल, जिनमें दिखाया कि कैसे इन जगहों ने पागलपन और बीमारी के बारे में हमारी आज की सोच को बनाया है।
और इस किताब अनुशासन और दंड के लिए उनका नजरिया इसलिए खास है क्योंकि वो ऊपरी वजहों से, मतलब जैसे हम और मानवीय हो रहे हैं, उससे आगे देखते हैं।
वो ये नहीं पूछते कि इरादे क्या थे, बल्कि ये पूछते हैं कि हुआ क्या।
एग्जैक्टली, वो देखते हैं कि सजा का ये नया सिस्टम असल में करता क्या है, इसकी तकनीकें क्या हैं और समाज पर इसका असर क्या होता है। उनका जोर सिस्टम के काम करने के तरीके और उसके असल लक्ष्य पर है।
तो ये किताब है किस बारे में? मतलब ऊपर से तो ये सजा के इतिहास की कहानी लगती है, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है ना?
हाँ बिल्कुल, ये किताब असल में हमारी आत्मा या जिसे हम आजकल साइकी कहते हैं, उसके बनने की कहानी है और उन ताकतों की पड़ताल है जो हमारी इस अंदरूनी दुनिया को शेप देती हैं।
फूको बताते हैं कि सजा का तरीका कैसे बदला, वो चौराहे पर होने वाले तमाशे, वो जिस्मानी तकलीफ,
उससे हटकर एक शांत कायदे कानून वाली, सुधार पर जोर देने वाली जेल व्यवस्था की तरफ।
किताब की शुरुआत तो वाकई चौंकाने वाली है। वो 1757 का किस्सा बताते हैं, रॉबर्ट फ्रांस्वा डेमियंस का, जिसने राजा पर हमले की कोशिश की थी
और उसे जो सजा मिली, भयानक, सरेआम घंटों तक यातनाएं दी गईं, फिर मारा गया। ये बादशाह की ताकत का एक खौफनाक पब्लिक डिस्प्ले था, जैसे वो अपनी ताकत मुजरिम के जिस्म पर लिख रहे हों।
और फिर तुरंत बाद फूको हमें लगभग 80 साल आगे ले जाते हैं, 1830 के दशक में, और एक बाल सुधार गृह का टाइम टेबल दिखाते हैं।
एकदम बोरिंग सा टाइम टेबल लगता है, सुबह 6 बजे उठना, प्रार्थना, काम, पढ़ाई, खाना, सोना, हर मिनट का हिसाब।
यही कॉन्ट्रास्ट, यही फर्क किताब का मेन सवाल खड़ा करता है। सिर्फ 80 सालों में सजा की सोच इतनी कैसे बदल गई? जिस्म को सरेआम तबाह करने से लेकर आत्मा को इतने कायदे से बांधने तक।
और फूको का जवाब है, ये सिर्फ रहम का मामला नहीं था, ये ताकत के इस्तेमाल का एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा एफिशिएंट तरीका था, जिसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करना, उन्हें उपयोगी बनाना था।
अच्छा,
चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। पहले वो पुराना तरीका, तमाशे वाली सजा। आपने बताया डेमियंस की सजा, वो सिर्फ क्रूरता नहीं थी।
नहीं, फूको कहते हैं ये एक पॉलिटिकल रिचुअल था, एक राजनीतिक रस्म। जुर्म मतलब राजा की सत्ता पर हमला, तो सजा के जरिए मुजरिम के शरीर पर वो सत्ता फिर से स्थापित की जाती थी। सबके सामने बॉडी ही टारगेट थी।
लेकिन इस तरीके में रिस्क भी था, है ना?
हाँ बिल्कुल। जिस भीड़ को डराने के लिए ये तमाशा होता था वो कभी कभी मुजरिम के पक्ष में हो जाती थी। दंगे हो सकते थे। ये एक राजनीतिक जोखिम था। और साथ ही वो इनलाइटनमेंट वाले विचारक भी आ गए थे, बेकारिया जैसे लोग।
सही, वो कहने लगे थे कि सजाएं बर्बर हैं, बेअसर हैं। उन्होंने एक ज्यादा रैशनल, तर्कसंगत सिस्टम की वकालत की।
उनका मकसद बदला नहीं बल्कि अपराध रोकना था। वो चाहते थे कि सजा निश्चित हो, जल्दी मिले और जुर्म के हिसाब से हो, ताकि कानून और सजा का कनेक्शन दिमाग में बैठ जाए।
बिल्कुल, निशाना शरीर से हटकर मन पर आ गया, सोच पर।
और यहीं पर फूको अपना सबसे बड़ा आइडिया लाते हैं, अनुशासन, डिसिप्लिन।
हाँ, और ये कोई एक चीज नहीं है, ये शरीर को, जगह को और वक्त को काबू में करने की बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स का एक जाल है।
और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये टेक्निक्स पहले जेल में नहीं आई।
अच्छा, तो फिर कहाँ से आई हैं?
फूको बताते हैं कि ये पनपी सेना की बैरकों में, स्कूलों में, अस्पतालों में, फैक्ट्रियों में, इन सब का मकसद था आज्ञाकारी शरीर बनाना, डोसाइल बॉडीज।
डोसाइल बॉडीज मतलब ऐसे शरीर जो काम भी करें और काबू में भी रहें। एग्जैक्टली, प्रोडक्टिव भी और कंट्रोलेबल भी।
तो ये बनते कैसे थे, ये तकनीकें क्या थीं? कुछ उदाहरण देंगे?
हाँ बिल्कुल। पहली है स्थान का वितरण या जगह का बंटवारा, मतलब लोगों को एक खास जगह बंद करना, स्कूल, फैक्ट्री, फिर उस जगह को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, हर बच्चे की अपनी डेस्क, हर वर्कर का अपना स्टेशन और हर काम के लिए एक तय जगह।
इससे भीड़ एक तरह के ग्रिड में बदल जाती है, सब अपनी अपनी जगह पर।
सही। फिर दूसरी तकनीक है गतिविधि पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी। इसमें टाइम और हरकतों का बारीक नियमन आता है, जैसे टाइम टेबल, दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, हर काम का वक्त तय करना।
जैसे स्कूल की घंटी बजती है या फैक्ट्री का सायरन।
हाँ, या फौजी ड्रिल, जो हरकतों को तोड़कर उन्हें एक जैसा और कुशल बनाती है, शरीर को एक मशीन की तरह प्रेडिक्टेबल बनाने की कोशिश।
ठीक है, जगह और वक्त तो काबू में आ गए, पर इन सब पर नजर रखना और ये पक्का करना कि लोग कायदे से ही काम कर रहे हैं।
नजर रखी जा सके, लेकिन देखने वाला खुद लगभग अदृश्य रहे। सोचिए, क्लासरूम में टीचर की ऊंची डेस्क या फैक्ट्री में सुपरवाइजर का ऊंचा केबिन।
इससे लोगों में हमेशा ये एहसास रहता है कि उन पर नजर है।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है मानकीकरण करने वाला निर्णय, नॉर्मलाइजिंग जजमेंट। ये लोगों की तुलना एक मानक या नॉर्म से करने का तरीका है, उन्हें रैंक देना, ग्रेड देना।
अच्छा, जैसे स्कूल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना या ऑफिस में परफॉर्मेंस रेटिंग।
हाँ, और जो मानक से हटते हैं उन्हें छोटी छोटी सजाएं देना या सुधारना। ये बड़ी भयानक सजाएं नहीं है, पर ये लगातार याद दिलाती हैं कि सही क्या है और गलत क्या।
और फिर आती है परीक्षा, एग्जामिनेशन।
स्कूल से लेकर नौकरी तक, हर जगह परीक्षा इन दोनों चीजों को, निगरानी और मानकीकरण को जोड़ देती है। परीक्षा के जरिए हर व्यक्ति एक केस बन जाता है, उसकी जानकारी दर्ज होती है, उसे मापा जाता है, उसकी तुलना होती है, उसे कंट्रोल किया जाता है, वो एक फाइल, एक दस्तावेज बन जाता है।
समझ गई। तो ये सारी तकनीकें, जगह बांटना, वक्त बांधना, नजर रखना, मानक बनाना, परीक्षा लेना, ये सब मिलकर अनुशासन बनाती हैं। और फूको कहते हैं कि ये सब फिर जेल में आकर इकट्ठी हो गई।
हाँ, फूको का तर्क है कि 19वीं सदी में जेल सजा का मुख्य तरीका इसीलिए बनी, अपनी सारी आलोचनाओं के बावजूद, क्योंकि वो इन सभी अनुशासनात्मक तकनीकों को लागू करने के लिए परफेक्ट जगह थी।
जेल का मकसद सिर्फ आजादी छीनना नहीं रहा।
नहीं, बल्कि व्यक्ति का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना था, उसकी आत्मा को सुधारना, उसे नॉर्मल बनाना था।
और यहीं पर वो पेनोप्टिकॉन वाली बात आती है, जेरेमी बेंथम का डिजाइन।
बिल्कुल, वो गोल जेल, बीच में टावर, गार्ड सबको देख सकता है पर कैदी गार्ड को नहीं देख सकते, उन्हें पता भी नहीं कि उन पर नजर है या नहीं।
तो वो हमेशा यही मानकर चलते हैं कि नजर रखी ही जा रही है।
एग्जैक्टली, निगरानी का डर अंदर बैठ जाता है, वो खुद ही खुद पर नजर रखने लगते हैं। यही है फूको का मतलब जब वो कहते हैं दृश्यता एक जाल है, सिर्फ देखे जाने की संभावना ही हमें काबू में रखने के लिए काफी है।
लेकिन आमतौर पर तो हम यही सुनते हैं कि जेलें अपराध रोकने में नाकाम रही हैं। फूको इस पर क्या कहते हैं?
यही फूको सबसे रेडिकल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जेल अपने बताए गए लक्ष्य में फेल नहीं होती, बल्कि उसका असली छिपा हुआ काम है अपराधिता, यानी डिलिंक्वेंसी को पैदा करना और मैनेज करना।
पैदा करना मतलब?
हाँ, मतलब जेल अपराधियों का एक अलग पहचाना जा सकने वाला, निगरानी में रखा जा सकने वाला ग्रुप बनाती है। फिर इस खतरनाक ग्रुप का डर दिखा के पूरी आबादी पर पुलिस और निगरानी का शिकंजा कसा जा सकता है। ये अपराध को कंट्रोल करने का, उसे समाज के हाशिए पर रखने का एक तरीका है।
अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल उल्टी सोच है।
और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फुको का तर्क है कि जेल में जो ये अनुशासन की तकनीकें कामयाब हुईं, वो सिर्फ जेल की दीवारों के अंदर नहीं रहीं,
वो बाहर फैल गईं।
हाँ, स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री, दफ्तर, सेना, हर जगह निगरानी, टाइम टेबल, रैंकिंग, परीक्षा, नियम कायदे। इससे एक कारागार समाज या अनुशासनात्मक समाज बन गया। इसीलिए फुको वो मशहूर सवाल पूछते हैं, क्या ये आश्चर्यजनक है कि जेलें कारखानों, स्कूलों, बैरकों, अस्पतालों जैसी दिखती है, जो सभी जेलों जैसी दिखती हैं?
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ खास बातें उभर कर आती हैं।
जी,
पहली तो ये कि शक्ति और ज्ञान का गहरा रिश्ता है, पावर और नॉलेज।
बिल्कुल,
ये हमेशा साथ चलते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं।
जैसे मनोविज्ञान या क्रिमिनोलॉजी जैसे विषय, वो सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं बने। उन्होंने बताया कि नॉर्मल क्या है और असामान्य क्या, और फिर इसी ज्ञान ने असामान्य को काबू करने या सुधारने के तरीके दिए
जाता है।
दूसरी अहम बात यह है कि आज का कंट्रोल सिर्फ कानून के डर पर आधारित नहीं है, बल्कि मानक या नॉर्म्स पर आधारित है। सोचिए, स्कूल में अच्छे नंबर, ऑफिस में टारगेट, समाज में सही बर्ताव, ये सब मानक हैं।
और हम लगातार खुद को और दूसरों को इन पैमानों पर नापते रहते हैं, कौन आगे कौन पीछे।
हाँ, भारत में लोग क्या कहेंगे का डर या जाति समुदाय के नियम, ये भी तो इसी तरह के मानक हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं।
और वो बात फिर से याद आती है, आत्मा शरीर की जेल है। सुनने में कितना अजीब लगता है।
हाँ, पर फुको का तर्क है कि आधुनिक ताकत हमारे अंदर एक आत्मा, एक चेतना गढ़ती है, जिसमें सही गलत, शर्म, जिम्मेदारी के भाव होते हैं, और फिर यही आत्मा हमारे शरीर को, हमारी हरकतों को काबू में रखती है।
हमें बाहरी जंजीरों की उतनी जरूरत नहीं पड़ती,
क्योंकि हम खुद ही अपनी निगरानी करने लगते हैं,
खुद को सेंसर करते हैं। और चौथा पॉइंट, वो आज्ञाकारी शरीर बनाने का लक्ष्य, डोसाइल बॉडीज।
बिल्कुल, कैसे हमारे सारे सिस्टम, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, हेल्थ केयर भी हमें सिर्फ ज्यादा कुशल बनाने की ही कोशिश नहीं करते, बल्कि साथ साथ ऐसा बनाने की भी कोशिश करते हैं जो व्यवस्था के हिसाब से चलें।
भारत में स्कूलों की यूनिफॉर्म, ऑफिस की रूटीन, मीटिंग्स में बैठने का तरीका, ये सब हमें उपयोगी बनाने के साथ साथ एक जैसा और काबू में रखने लायक भी बनाते हैं।
वाकई, इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जो दिमाग में घूमती रहती हैं। एक तो ये जो आपने कहा, आत्मा शरीर की जेल है।
दूसरा वो पेनोप्टिकॉन वाला आइडिया, दृश्यता एक जाल है, देखे जाने का डर ही काफी है।
हाँ, आज के ज़माने में सोचें तो सीसीटीवी, हमारी ऑनलाइन प्रोफाइल, सोशल मीडिया, ये सब इसी जाल का हिस्सा हैं। हम लगातार किसी अनदेखे दर्शक के लिए खुद को पेश कर रहे हैं।
एक और विचार जो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करता है, ज्ञानोदय जिसने स्वतंत्रता की खोज की, उसी ने अनुशासन का भी आविष्कार किया। कितना बड़ा विरोधाभास है।
हाँ, जिस दौर में आज़ादी और अधिकारों की बात हुई, उसी में कंट्रोल के बारीक तरीके भी बने। शायद ये दोनों साथ साथ चलते हैं।
और आखिर में वो सवाल, क्या ये आश्चर्यजनक है कि जेलें कारखानों, स्कूलों, बैरकों, अस्पतालों जैसी दिखती हैं, जो सभी जेलों जैसी दिखती हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोजमर्रा की जगहें कितनी ज्यादा कंट्रोल के सिद्धांतों पर बनी है।
तो इन सब बातों का हमारी जिंदगी में क्या मतलब है, इन्हें हम कहाँ देख सकते हैं?
स्कूल और दफ्तर तो सबसे साफ उदाहरण है। कतार में लगी डेस्क, टाइम टेबल, परीक्षा, परफॉर्मेंस रिव्यू, रैंकिंग्स।
फुको हमें इन्हें सिर्फ पढ़ाई या काम के तरीकों की तरह नहीं, बल्कि हमें एक खास ढर्रे में ढालने, आज्ञाकारी बनाने की प्रक्रियाओं की तरह देखने में मदद करते हैं।
और आज के डिजिटल दौर में तो ये बातें और भी ज्यादा सच लगती हैं। सोशल मीडिया, वो तो एक तरह का डिजिटल पैनोप्टिकॉन ही है।
बिल्कुल, हम खुद को पेश करते हैं। लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमें लगातार जज किया जाता है। हम अक्सर वही दिखाते हैं जो पसंद किया जाएगा। हमारा डेटा इकट्ठा होता है, एल्गोरिदम हमें कैटेगराइज करते हैं, हमारी पसंद को प्रभावित करते हैं।
हम अनजाने में खुद ही अपनी निगरानी करवा रहे होते हैं और खुद को मानकों के हिसाब से ढाल रहे होते हैं।
मेरे ख्याल से फुको के विचार हमें एक बहुत जरूरी क्रिटिकल लेंस देते हैं। वो सिखाते हैं कि तरक्की या सुधार के दावों पर आंख मूंद कर यकीन न करें।
हाँ, वो हमें दिखाते हैं कि ताकत अक्सर सीधी नहीं दिखती, वो बिल्डिंग्स के डिजाइन में, टाइम टेबल में, परीक्षा के तरीकों में, यहाँ तक कि भाषा में छुपी होती है।
ये हमें अपने आसपास कंट्रोल के उन बारीक तरीकों को पहचानने में मदद करता है जिन्हें हम अक्सर नॉर्मल मान लेते हैं।
इस पूरी चर्चा के बाद मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि कैसे आधुनिक ताकत सबसे असरदार तब होती है जब वो जालिम नहीं बल्कि मददगार या तर्कसंगत दिखती है। सुधारने, सिखाने, सेहतमंद बनाने के नाम पर चलने वाले सिस्टम असल में कंट्रोल के सबसे गहरे तरीके हो सकते हैं।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि जिसे हम अपनी आत्मा, अपना व्यक्तित्व मानते हैं, वो भी काफी हद तक ऐतिहासिक रूप से बना है, समाज और शक्ति संबंधों से गढ़ा गया है।
पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बस कठपुतलियां हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये ताकतें और रिश्ते बने हैं तो उन्हें समझा जा सकता है, उन पर सवाल उठाया जा सकता है और शायद बदला भी जा सकता है।
तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर स्कूल, अस्पताल, दफ्तर, फैक्ट्री, ये सब जगह अनुशासन की इन तकनीकों से इतनी भरी हुई है तो हम असल में जेल की दीवारों के कितने बाहर हैं? एक ऐसे समाज में जो हर तरफ से हमें अनुशासित करने में लगा है, असली आज़ादी का मतलब क्या हो सकता है और वो कैसी दिख सकती है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।